जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री साई राम। 567 वर्ष ईसा मसीह से पहले 567 BC कहा जाता है, एक राजा थे, उनका नाम था सुदोधन और उनकी पत्नी थी माया। उनके राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, समारोह मनाया जा रहा था, क्योंकि उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र को नाम दिया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो आपकी अभिलाषा पूरी कर दे। अभिलाषा का पूर्ण होना ही सिद्धार्थ कहा जाता है। कहते हैं पुत्र जन्म के पश्चात 7वें दिन माया का स्वर्गवास हो गया। राजा की दूसरी पत्नी गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया, उसको बड़ा किया। ये भी कहा जाता है जब इस पुत्र का जन्म हुआ था, हिमालय की गोद में एक साधु बैठा हुआ था जिसका नाम था असिता। वह राजा का मित्र भी था, मित्र को मिलने के लिए, मित्र के पुत्र के दर्शन करने के लिए राजा के राज्य में पहुंच गया। कहते हैं ये साधु असिता उस बालक को देखकर कभी रोता कभी हंसता। महाराज ने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है, कभी तुम रोते हो कभी तुम हंसते हो बेटे को देख के? असिता जी बोले, मैं रोता इसलिए हूं क्योंकि ये बालक जब बड़ा होगा इसके साथ मैं अपना समय व्यतीत नहीं कर पाऊंगा, इसका बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा, ये साधारण बालक नहीं है। और मैं हंसता इसलिए हूं कि कम से कम मुझे उसके दर्शन तो हो गए हैं। ये बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या सन्यासी। जब राजा ने यह सुना कि मेरा पुत्र सन्यासी बन सकता है, थोड़ा चिंतित हुए। प्रत्येक पिता चाहता है कि अपने पुत्र को ऊंचा उठता हुआ देखे, उसी प्रकार से राजा भी चाहता था कि मेरा पुत्र भी सम्राट बने। राजा ने सोचा, अगर मैं अपने पुत्र को राजमहल के चार दीवारों से बाहर ना जाने दूं, उसको ऐशो आराम का जीवन दूं, शायद मेरा पुत्र सन्यास की ओर मुख ना मोड़े। और राजा ने वैसा ही किया। समय के साथ साथ राजकुमार बड़ा होने लग गया, उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी का नाम था यशोधरा, उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया गया। सिद्धार्थ अब सोच रहा है, मैं युवराज हूं, आने वाले समय में मैं राजा बनूंगा, मुझे चाहिए कि मैं जाके अपने राज्य में भ्रमण करूं, देख कर आऊं मेरे राज्य में लोग सुखी हैं या नहीं, कोई चीज की कमी तो नहीं है, कोई चीज का दुख तो नहीं है उनको। कहते हैं सिद्धार्थ अपने कुछ साथियों के साथ राजभवन से बाहर निकला, शहर की ओर गांवों की ओर चल पड़ा। वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी कमर को झुकाए चल रहा है। तो युवराज ने पूछा अपने साथी से, भाई ये क्या हो गया, इसको ऐसे क्यों चल रहा है, झुक क्यों चल रहा है? साथी ने बताया, महाराज या युवराज, ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे से कमर झुक गई है। युवराज ने कहा, बुढ़ापा क्या होता है, क्या बुढ़ापा मेरे को भी आ सकता है, क्या मेरी कमर भी झुक सकती है? साथी ने समझाया, बुढ़ापा सभी को आता है अगर आप जी रहे हैं तो। और कई लोग बुढ़ापे में झुक जाते हैं, कमर झुक जाती है, सीधा चल नहीं पाते हैं। थोड़ा आगे गए, देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा। युवराज ने पूछा, इसे क्या हुआ है? साथी बोले, बीमार है, इसका शरीर रोग से ग्रस्त हो गया है। रोग के बारे में बताया, रोग आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। थोड़ा और आगे गए, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और चार लोग उसको अपने कंधे में रख के ले जा रहे हैं, राम नाम जपते हैं, अर्थात एक मृत व्यक्ति की के शरीर को उठा के ले जा रहे हैं, डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, ये आदमी लेटा क्यों हुआ है, सोया क्यों हुआ है, लोग उसको उठा के कहां ले जा रहे हैं? साथी बोले, देखो महाराज, देखो युवराज, ये आदमी सोया नहीं हुआ, मर गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल गई है, अब ये शरीर किसी काम का नहीं है, ये इसके सगे संबंधी शरीर को उठा के ले जा रहे हैं, इसको जला देंगे, राख कर देंगे, खाक कर देंगे। युवराज चौंका, कैसी बात करते हैं आप, क्या मृत्यु सभी को आती है? जी युवराज, मृत्यु आपको भी आएगी। उसके बाद युवराज लौट के महल में आ गया, सोचने लग गए, दिन भर की क्रिया के विचार करने लग गया, रात भर नींद ना आए, दुख का कारण क्या है? मुख से निकला, सर्वम दुखम, ऑल इज सोरो, सर्वम भयम, ऑल इज फियर, सर्वम अनित्यम, ऑल इज ट्रांजिएंट, सर्वम शून्यम, ऑल इज एम्प्टीनेस, सब दुख है, भय है, डर है, ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, सब शून्य है, एम्प्टी है। उसी रात को अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ के महल से बाहर चले गए सत्य की खोज में। कई साधुओं को मिले, ऋषियों को मिले, सत्य को जानना चाह, कोई भी साधु संत उनके सभी प्रश्नों के उत्तर सही प्रकार से नहीं दे पाते थे, या यूं कहिए कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। एक दिन सिद्धार्थ जी पूरी खोज करने के बाद कहते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, 6 वर्षों तक तपस्या करी। वो अचानक उठ के बैठ गया, पकड़ में आ गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, मैंने चोर को पकड़ लिया, मैंने चोर को पकड़ लिया। कौन चोर? चोर का अर्थ था मन, माइंड। उस समय सिद्धार्थ की उम्र कोई 35 वर्ष की यही होगी। कहते हैं 29 वर्ष से लेके 35 वर्ष, 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, वो चोर उनके पकड़ में आ गया। यहां पर उन्होंने 4 व्यक्तित्व कहे, 4 स्टेटमेंट दी, जिसे कहा जाता है 4 ट्रुथ। पहला, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। जीवन में बहुत दुख है, जन्म से मृत्यु तक सारे दुख ही दुख हैं, ऑल इवेंट्स आर पेनफुल। दूसरा, सफरिंग हैज द रीजन, दुख का कोई कारण है। तीसरा, जो कारण है वो है डिजायर, वो है इच्छा। द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज द डिजायर, ये इच्छा है जो सोर है, जो सारे दुख का कारण है। और ये इच्छाएं हमारे को बांधती रहती हैं, एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा। चौथा, इस इच्छा को हटाने का कोई तरीका तो होगा, देयर हैज टू बी अ वे टू रिमूव द डिजायर। ये 4 व्यक्तित्व या 4 स्टेटमेंट्स, कहा गया 4 ट्रुथ्स। ये यहां जरा विचार कीजिएगा, जब सिद्धार्थ 6 वर्ष की तपस्या के बाद उठे, उनको बोध हो गया, उनको ज्ञान हो गया, तब तो उनको कहा जाने लगा महात्मा बुद्ध। यहां से बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म आरंभ हुआ। क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध के माध्यम से काफी लोग जागे हैं, उनकी वाणी सोच की वाणी थी। जो भावुक लोग होते हैं ना, जो इमोशनल लोग होते हैं, उनके हृदय में प्रेम भरा होता है, वो एकदम से भगवान की दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जो रैशनल माइंडेड होते हैं, जो हर बात में आर्ग्यू करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, साइंटिफिक माइंडेड होते हैं, विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए भगवान के जाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनका दिमाग विचारों से भरा होता है। गौतम बुद्ध ने विचारों से भरे हुए लोगों को जगाया। मनुष्य के विकास हुआ तो मस्तिष्क का विकास हुआ। बौद्ध धर्म बुद्धि का धर्म है, आरंभ बुद्धि से है लेकिन अंत बुद्धि में नहीं, अंत परमात्मा में ही है। गौतम बुद्ध ने एनालिसिस की, विश्लेषण किया, इसलिए कहा गया बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ एनालिसिस। विश्लेषण किया, विश्लेषण से, शास्त्र के द्वारा नहीं, विश्लेषण के द्वारा उन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर खोजे। चार व्यक्तित्व, जीवन में दुख है, यह दुख जीवन से भरा हुआ है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा, सफरिंग हैज अ रीजन, दुख का कोई कारण है। तीसरा, कॉज द रीजन इज द डिजायर, द दुख का कारण है वो हमारी इच्छा है। चौथा, इच्छा को हटाने का कोई तरीका तो होगा, उसके लिए उन्होंने दिए 8-fold path, जिसको पाली भाषा में कहा गया, जो 8 points हैं, 8 points हैं, सम्मादिति, परफेक्ट विजन, हमारे अंदर होनी चाहिए परफेक्ट विजन। परफेक्ट विजन का मतलब है विच सपोर्ट विजडम। विजन का केवल दृष्टि नहीं है, विचार कीजिएगा, विजन को दृष्टि बोलते हैं, लेकिन दूर तक देखिए और सत्य को देखिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग एज दे आर, सीइंग द ट्रू नेचर, दूसरा पॉइंट सम संकल्प, अर्थात परफेक्ट इंटेंशन, परफेक्ट थॉट, परफेक्ट एटीट्यूड। सही दृष्टि के बाद आते हैं सही विचार। आपने सुना होगा, वी आर व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं वे बन जाते हैं। सारी समस्या विचारों की है। जब कह रहे हैं परफेक्ट इंटेंशन, परफेक्ट थॉट, परफेक्ट एटीट्यूड, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे विचार ऊंचाइयों को छूने वाले होने चाहिए, हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। ये पहले से 2 points है, सम्मादिति, सम्मा संकप्पा, परफेक्ट विजन एंड परफेक्ट थॉट्स। ये बात करते हैं विजडम के बारे में, ज्ञान के बारे में। तीसरा पॉइंट, सम्मा वाक, परफेक्ट स्पीच, सही वाणी, जो आप बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए. नहीं नहीं, खाली क्लियर नहीं, खाली साफ नहीं, जो आप बोलते हैं वो सत्य होना चाहिए. प्रियम ब्रूहत, वो बोली जो सत्य हो. लेकिन वो सत्य बोले जो कड़वा ना हो, मीठा बोले. प्रियम ब्रूहत, मीठा बोलिए, सत्य बोलिए. सत्यम ब्रूहत, सत्यम बोलिए. लेकिन वो सत्य बोले जो मीठा हो, कड़वा ना हो. बात को समझिएगा. स्पीक द ट्रूथ, स्पीक लविंगली एंड सॉफ्टली, बट डू नॉट स्पीक द बिटर ट्रूथ, जिससे किसी को दुख पहुंचता हो. परफेक्ट स्पीच, हम कह सकते हैं द हैबिट ऑफ गॉसिपिंग. गपशप, मारे बेकार की बातें यहां की वहां करना, वो परफेक्ट नहीं है, वो दुखदाई है. चौथा पॉइंट, समकामना, माफ कीजिएगा, समकामा. कामा का अर्थ है कर्म, परफेक्ट कर्म, परफेक्ट एक्शन. आपने पढ़ा होगा गीता के अंदर, निष्काम कर्म करो. आप वो कर्म करो जो कर्म आपको बांधे नहीं, विद डिटैच मैनर, मोह से हटकर. वो कर्म विच क्रिएट द हार्मनी इन द सोसाइटी. पांचवा पॉइंट, सम अजीवा, अर्थात परफेक्ट लाइवलीहुड. आप जीवन जीने के लिए, जीविका चलाने के लिए क्या कार्य करते हैं, आप धन कैसे कमाते हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, इज इट बेस्ड ऑन द एथिक्स और नॉट. आपका सारा व्यापार, आपका सारा धन जिस प्रकार से आपने कमाया है, क्या उस कमाई के पीछे किसी गरीब के आंसू तो नहीं है? क्या उस कमाई के पीछे किसी का दर्द भरा खून की रक्त तो नहीं है, खून की बूंद तो नहीं है? माफ कीजिएगा, जो आप कमा रहे हैं, जो पैसा के बाद किसी को मारते तो नहीं है, स्टिल किलिंग इन्वॉल्व तो नहीं है? ध्यान रहे, आपकी जीविका चलाने का तरीका आपके विचारों पर प्रभाव डालता है. अगर पैसा आपने सही तरीके से नहीं कमाया है, वो पैसा कभी भी आपके मन में शांति नहीं लाएगा. छठा पॉइंट था सम वयामा, अर्थात परफेक्ट एफर्ट, पुरुषार्थ. एफर्ट टू डू व्हाट? एफर्ट टू गेट द रिड ऑफ द सिक्स इनर एनिमीज. आपको पूरे जीवन लगातार ये प्रयास करना होगा, ये पुरुषार्थ करना होगा, ये तैयारी करनी होगी, ये कोशिश करनी होगी कि आंतरिक छह शत्रु जो हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या. काम का अर्थ है इंटेंस डिजायर, क्रोध का अर्थ है एंगर, लोभ का अर्थ है अटैचमेंट, लोभ का अर्थ है ग्रीड, मोह का अर्थ है अटैचमेंट, मत्सर का अर्थ है ईगो, ईर्ष्या का अर्थ है जेलसी. ये छह शत्रु जो आपके भीतर बस रहे हैं, यू मस्ट मेक कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द सिक्स एनिमीज. आपको संपूर्ण जीवन इस बात पे प्रयास करना होगा. ये आपको क्या इस प्रकार से लड़ाई करनी होगी, झगड़ना करना होगा, झगड़ा करना होगा अपने ही शत्रुओं के साथ जो आपके भीतर वास कर रहे हैं. सातवां पॉइंट क्या है? समासत, परफेक्ट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, अर्थात डेवलप अवेयरनेस, नो डे ड्रीमिंग. ख्याली पुलाव नहीं बनाइए, अवेयर रहिए कि आप क्या हैं, अवेयर रहिए. जब आंखें खुल जाएं आपकी जागृत रहिए, जागृत का गेनिक कि आपके फिजिकल आंखें खुल जाएं, इस बात से आपको जागृति प्राप्त हो जाए कि आप कौन हैं, केवल साक्षी भाव है। आठवां वॉइस, आठवां पॉइंट था समय मेडिटेशन, समा ध्यानम, परफेक्ट मेडिटेशन। उसका मतलब क्या भाई? भाई आप रोज ध्यान लगाइए, इस प्रकार का ध्यान लगाइए जो आपको इस बात का एहसास कर दे कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर द सोल, द कॉन्शियसनेस, द प्योर कॉन्शियसनेस। कभी आपने इस बात पे विचार किया? आपने महात्मा बुद्ध ने केवल एक बार शव यात्रा देखी थी, उनकी आंख खुल गई। और हम ना जाने कितनी बार शमशान घाट में जाके आ चुके हैं, कितनी बार हम लोगों को शमशान घाट छोड़ने गए होंगे, हमारी आंखें तो नहीं खुली। आज भी उसी दुनिया में धक्के खा रहे हैं, उन्हीं इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। विचार कीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं लिया है, जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन रास्ता बता दिया है किस प्रकार से पहुंचे परमात्मा तक। कहते हैं जब महात्मा बुद्ध शरीर छोड़ने वाले थे तो उनके शिष्य ने, आनंद ने उनसे बात की, पूछा कोई लास्ट मैसेज है, कोई ऐसा संदेश जो आप चाहते हो लोगों को देना? उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, अपने दीपक संयम बनो, बिकम योर ओन लैम्प, ओन लाइट। क्या मतलब हुआ? यानी कि अपने अंदर जलती हुई आत्मा के प्रकाश, जलते हुए आत्मा के प्रकाश को जानने के लिए, विच इज सेल्फ एफल्जेंट, जो समय प्रकाशित है, आपको चाहिए सेल्फ एफर्ट, खुद कोशिश करनी होगी, तभी आप दीपक बन पाएंगे अपने आप। महात्मा बुद्ध ने बारंबार बात पर जोर दिया कि टेक द मिडिल पाथ, कोई एक्सट्रीम छोड़िए, ना ऊपर ना नीचे, बीच में रहो। या तो सुबह से शाम तक लगे रहो ध्यान में, पूजा पाठ में, या बिल्कुल भूखे प्यासे होकर बैठ जाओ, या कुछ भी ना करो, ना बीच का रास्ता अपनाओ। और आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन द बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है इंटेलेक्ट, मैं अपनी बुद्धि में शरण लेता हूं। ये इंडिविजुअल एवॉल्वमेंट है। संगम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन द सोसाइटी, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग समाज के लिए करता हूं, खाली अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी करता हूं। संगम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन द डिविनिटी। वो क्या? धर्मम शरणम गच्छामि, अर्थात आई टेक रिफ्यूज इन द डिविनिटी, इन द धर्मा, धर्मा क्या? डिवाइन लव। आप विचार कीजिएगा, रास्ते आपके सामने हैं, लेकिन प्रयास